मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 28 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों एक छोटी सी सूचना है और यह सूचना है हमारे ऑनलाइन के जो पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए कि आपके मेल पर एक छोटा सा स्पेशल ऑडियो भेजा गया है जिसमें जो आप लेक्चर्स सुन रहे हैं उनके बारे में कुछ बहुत ही ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं, तो आप सब अपने अपने मेल को चेक कर लेंगे, उसे एक्सेस कर लें और प्लीज़ इस ऑडियो को निश्चित तौर पर सुनने की कोशिश करें। यह बड़ा नहीं है, 11-12 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा यह ऑडियो है। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं दल बदल कानून पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना होगा कि सरकार ने एक घोषणा की है कि वो प्रत्येक जिले में कोविड जांच केंद्र बनाएगी। कोरोना की जांच के लिए जो केंद्र बनाए जाएंगे वो जिला स्तर पर होंगे और डेफिनेटली जब जिला स्तर पर केंद्र बना दिए जाएंगे तो फिर हम जो टेस्ट कर रहे हैं उनकी फिर जो रिपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट आने लगेंगी। और अभी इसी सिद्धांत को लेकर के चला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर नियंत्रण रख करके इसे फैलने से रोका जा सके और एक दिन ऐसी स्थिति आए कि यह पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में आ जाए। तो एक छोटी सी सूचना है, देखिए इस तरह के तथ्यों का आप इस्तेमाल कब करते हैं। मान लीजिए एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया कि सरकार ने कोरोना के नियंत्रण के लिए कौन कौन से कदम उठाए, एक सामान्य से जनरल नॉलेज के तहत पूछ लिया गया, तो उसमें एक तथ्य यह भी है कि जिला स्तर पर कोरोना के जांच के केंद्र स्थापित किए गए, लेकिन अभी घोषणा की गई है हुए नहीं है। मित्रों आपने आज के अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज में भी ये खबर थी कि फ्रांस से आपको ध्यान होगा कि हमने 36 लड़ाकू विमान का सौदा किया था जिसका नाम है रफाल। ये रफाल आपके दिमाग में होने चाहिए और किस देश से लिए गए हैं ये होना चाहिए, और ये लड़ाकू विमान है। तो जो सारे विमान हैं ये 2021 तक आएंगे, लेकिन फिलहाल 10 जो रफाल लड़ाकू विमान है वो भारत को सौंप दिए गए हैं, वो भारत पहुंच जाएंगे। और स्पेशली इस खबर को हाईलाइट इसलिए किया गया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो LAC है उस पर चीन के साथ किस तरह के तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में रफाल विमान मिलना कहीं ना कहीं भारत की स्थिति को, जो एक सैन्य स्थिति है, उसकी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने वाली एक घटना मालूम पड़ती है। दोस्तों इसके बारे में बस इतनी थोड़ी सी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। दोस्तों एक खबर कल के अखबारों में छपी थी लेकिन मैंने उसकी चर्चा नहीं की थी, मैं थोड़ी सी प्रतीक्षा कर रहा था, और आज के दैनिक भास्कर में उस पर बकायदे एडिटोरियल कमेंट भी आ गया है। और ये खबर ये है कि जो UNO है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी जो 26th रिपोर्ट आई है, संदर्भ के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं, जो 26वीं रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत के दो राज्य आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि ये राज्य कौन से हैं, केरल और कर्नाटक, दोनों क से हैं, केरल और कर्नाटक, इन राज्यों में इस्लामिक स्टेट IS का आप जानते हैं, इस्लामिक स्टेट के लगभग 200 आतंकी रह रहे हैं और वे इस देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। दो राज्यों में 200 आतंकी, मित्रों ये बहुत चौंकाने वाली बात है और सतर्क रहने वाली बात भी। इसको लेकर के एडिटोरियल में ये कहा गया है कि हमारी अपनी भी एजेंसीज हैं और हमारी एजेंसी इन बातों का क्यों नहीं पता लगा पाती हैं, क्या हमारी एजेंसी की कमजोरी है या कुछ लापरवाही है, ये प्रश्न उठाया गया है। खैर चलिए एडिटोरियल में इस तरह के बिल्कुल बातें उठाई जा सकती हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहां मालूम पड़ रहा है, जो इसे एडिटोरियल में ही दिया गया है, लेकिन मैं इसे बता इसलिए रहा हूं कि हो सकता है कि आप उसे उस एंगल से न देख पाएं और मिस कर जाएं। आपको फ्रेंड्स मालूम होगा, नाम आपने सुना होगा NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये हमारे यहां की एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जिसका काम है आतंकवादी गतिविधियों की जांच करना, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यानी इन्वेस्टिगेशन करती है। खासकर जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था 2008 के फिर ये एक्ट लाया गया और बकायदे 2009 में ये एजेंसी बन गई है। इसमें जो प्रश्न उठाया गया है मुझे बहुत ही एक वैलिड ये प्रश्न लगा, इसलिए मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इस तरह के कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आप इसमें क्या सलाह देना चाहेंगे। तो इस एडिटोरियल में एक सलाह दी गई है कि जो NIA है ये एक इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी है, है ना, ये जांच करती है, अगर कहीं आतंकवादी घटना घटित हो गई है तो फिर उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करती है कि क्यों हुई, कौन कौन शामिल थे, क्या हुआ, उसके बारे में जांच करती है। ये अपने आप में गुप्तचर का काम नहीं करती है, यानी कि सूचनाएं इकट्ठा करने का काम नहीं करती है। और जहां तक सूचनाओं की बात है तो बेसिकली हमारे यहां जो इस तरह की दूसरी एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन है इसका, या यू कह लीजिए कि उन पर डिपेंड करती है। आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे आप कहते हैं, रा है, रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे आप कहते हैं, मिलिट्री की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, केंद्रीय पुलिस बलों की अपनी खुफिया एजेंसी है, राज्यों की भी इस तरह की एजेंसियां हैं। तो इन एजेंसियों के सहयोग से एनआईए काम करती है। इसमें जो प्रश्न उठाया गया है, या यूं कह लीजिए कि जो सलाह दी गई है, वो ये कि एनआईए की भी अब एक ऐसी शाखा बनाई जानी चाहिए, स्थापित की जानी चाहिए, कि वह खुद भी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इस तरह की सूचनाओं को इकट्ठा करने का भी काम कर सके। आतंकवादी घटनाएं घटित हो गई तब इसका काम शुरू होता है, लेकिन इसे कुछ इस तरह के दायित्व भी दिए जाएं या स्वायत्तता दी जाए कि खुद भी पता कर सके कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। तो आप यूं कह लीजिए कि बेसिकली इसमें एनआईए के स्वरूप में और अधिकार में परिवर्तन करने की बात भी थोड़ी सी कही गई है, और यही मुझे मुख्य बात लग रही है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की दृष्टि से। फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट छपी है एक अखबार में, और मुझे लगता है कि पहली बार मैं इस तरह की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं तो आपके साथ शेयर करना चाहिए, और ये ज्योग्राफी का भी विषय हो सकता है और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका भी एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। बेल्जियम की एक राजकीय वेधशाला है, रॉयल वेधशाला, उसने ये रिपोर्ट दी है। अब इस रिपोर्ट में इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही है, उन्होंने बात कही है कि अभी पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन के कारण पृथ्वी में जो कंपन होता था, जो वाइब्रेशन होते थे, उसमें 50% की कमी आ गई है। अब देखिए कि सारी एक्टिविटीज कम है, रेल ट्रेन चल नहीं रही है, हवाई जहाज का चलना बंद हो गया है, लोगों का आना जाना बंद हो गया है, सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं, इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो धरती पर जो कंपन होता था आवाज की वजह से, आप देखिए कि आवाज के कंपन होते हैं, अगर आपने कभी क्या अनुभव ही होगा कि आप स्टेशन पर खड़े हैं, ट्रेन धड़धड़ाती हुई जब स्टेशन पर प्रवेश करती है तो देखिए आपके पैरों में कंपन होती है, और अगर आपका घर ट्रेन की पटरी के थोड़े से दूर पर हो, जब ट्रेन गुजरती है तो बकायदे आपके धरातल पर वहां कंपन, दीवारों पर कंपन महसूस आप कर सकते हैं। इसमें उन्होंने ये कहा कि धरती में जो कंपन होता था उसमें लगभग 50% की कमी आई है, और इस कमी के कारण भूकंप की जानकारी दे पाना आसान हो गया है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, भूकंप आने से पहले भूकंप की जानकारी दे पाना। जैसे तूफान के बारे में तो आप देखते हैं कि पहले से चेतावनी दे दी जाती है, भूकंप के बारे में बहुत मुश्किल होता है। तो इनका कहना है कि चूंकि अब ये जो कंपन है ये कम हो गया है, तो अब बड़े आराम से, मतलब अपेक्षाकृत, आप कह लीजिए आराम से तो नहीं कहना चाहिए, कि आसान हो गया है कि हम भूकंप आने से पहले इस बात की जानकारी दे सके। और आपको मालूम है कि जो सिस्मोमीटर है उससे भूकंप के जो तरंगे होती हैं और उन सब के बारे में मापा जाता है, और वो खासकर धरती में होने वाले हलचलों से जो कंपन उत्पन्न होता है उसी को पकड़ने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टडी है, रिपोर्ट है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, और बेहतर होगा कि आप इसे कहीं थोड़ा सा नोट भी कर लें कि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय है कि जो दल बदल कानून है उसका क्या किया जाए की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो दल बदल कानून है किस तरीके से उसका आप यूं कह लीजिए कि प्रभाव नहीं हो पा रहा है भारतीय राजनीति पर उतना ज्यादा, उसको हम प्रमाणित होता हुआ देख रहे हैं। दल बदल कानून, देखिए इसके केंद्र में क्या है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव में भाग लेती हैं, और जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो उस राजनीतिक पार्टी के बैनर से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, कुछ अपने स्वतंत्र भी लड़ते हैं। तो आप एक राजनीतिक दल की ओर से प्रत्याशी बनते हैं, फिर आप पब्लिक के बीच में जाते हैं। वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना एजेंडा देती है, अपना घोषणा पत्र जारी करती है जनता के सामने, और जनता उस पार्टी को वोट देती है। देखिए सामान्य तौर पर तो ठीक है, जनता उस प्रत्याशी को भी वोट दे रही है, अगर वो किसी व्यक्तिगत जाति का है तो उस जाति को भी वोट दे रही। भारत में तो ऐसे स्थितियां होती ही हैं, है ना, वो उस वर्ग को वोट दे रही है। लेकिन अगर हम राजनीतिक दृष्टि से विचार करें तो सीधी सी बात है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रही है, कांग्रेस को दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, कम्युनिस्ट पार्टी को दे रही है, समाजवादी पार्टी को दे रही है, वो पार्टी को वोट दे रही है। यानी कि जो भी पार्टी को वोट दे रहा है उस पार्टी के सिद्धांतों से वो सहमत है, उसके एजेंडे को वो इंडोर्स कर रहा है, स्वीकृति दे रहा है। वो बन करके आ गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, और इसके बाद पता लगा कि कुछ समय के बाद उन्होंने अपना पाला बदल लिया, दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, या शामिल नहीं हुए तो आप कह लीजिए कि इस्तीफा दे दिया, फिर शामिल हो गए। जो भी स्थिति है दल बदल के बारे में आप देख रहे हैं, और खासकर कुछ समय पहले जो मध्य प्रदेश में हुआ उसको आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, और फिर अभी राजस्थान में वो मामला चल ही रहा है, इससे पहले कर्नाटक में हो चुका, दूसरे राज्यों में भी अब दिखाई ये दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होने लगी हैं। आपको मालूम है कि सबसे पहले इसके बारे में कानून बनाया था जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, 52nd संविधान संशोधन आया था। इसके बाद जब उसने काम नहीं किया तो बाद में फिर एक संविधान में थोड़ा सा उसी एक्ट में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, इसके बाद भी ये बात बनी नहीं। देखिए क्या क्या परिवर्तन किए गए उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, आप बकायदे ये चैप्टर है आपकी किताबों में और आपको पढ़ लेना चाहिए, और ये बहुत ही चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी जानकारी में होना चाहिए। यहां जो मैं आपके दिमाग में जो दो बात तीन बातें दर्ज कराना चाह रहा हूं वो क्या है, वो सामान्यतः किताबों में पढ़ने को नहीं मिलते हैं, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूं। एक लेख छपा है आज दैनिक भास्कर में जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी का, उन्हीं से मैंने ये लिया है और ये आपको आज प्रोवाइड भी मैं कर रहा हूं आर्टिकल के रूप में। सन 2000 में संविधान की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बना था, संविधान की कार्यप्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, उसने अपने प्रतिवेदन में बकायदे दल बदलुओं के लिए कुछ सिफारिशें की थी कि जो लोग दल बदलते हैं उन्हें कोई मंत्री पद न दिया जाए, कोई सार्वजनिक लाभ का पद न दिया जाए दल बदलने पर। देखिए दल बदलने पर क्या है कि अगर आप दो तिहाई से अधिक बदल लेते हैं तो ठीक है, फिर तो आपकी एमपी एमएलए जो पद है वो बचा रह सकता है, लेकिन अगर उतने नहीं है तो फिर आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। जैसे मध्य प्रदेश के मामले में ही देखिए, मध्य प्रदेश के मामले में कांग्रेस के लगभग 22 एमएलए ने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया, ठीक है त्यागपत्र दे दिया, अब वो एमएलए नहीं रहे, तो यहां तक तो दल बदल कानून ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया, अब यहां पर मामला गड़बड़ हो गया, दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, ठीक है चलिए कानून के तहत वो भी ठीक है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो जिन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया था उसको उन्होंने मंत्री पद दे दिया, और संविधान के अनुसार किसी को भी 6 महीने के लिए तो आप मंत्री बना सकते हैं। अब आप देखिए कि पहले वो एमएलए थे, अब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र के बाद अब वो एमएलए नहीं है लेकिन उनको मंत्री पद दे दिया गया, ठीक है अब जब चुनाव होंगे वो चुनाव जीत जाएंगे तो उनका मंत्री पद भी कंटिन्यू करेगा, और अगर नहीं जीत गए तो कोई बात नहीं हार जाएंगे, जो दूसरा जीतेगा वो फिर देखा जाएगा। तो सरकार के सामने संकट पैदा हो गया और ये एक नैतिक संकट है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मंत्री पद या सार्वजनिक लाभ का कोई पद न दिया जाए। और यहां उसी में भी एक बात और भी कही थी कि जब तक नए विधानसभा का गठन नहीं हो जाता है तब तक बकायदे उनको चुनाव में उनका जो कार्यकाल है वो अगले चुनाव से आगे तक के लिए टाल दिया जाए। मतलब ये नहीं कि ठीक है 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं तो भैया चलो 6 महीने के पहले ये सब कर लेते हैं इसके बाद फिर वहां चुनाव लड़ लेंगे, नहीं वहां भी उनको उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये सिफारिश उन्होंने की थी। लेकिन उस सिफारिश को माना नहीं गया है और लगातार जो दल बदल कानून है आप देखिए कि किस तरीके से अप्रासंगिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो सिफारिश है दोस्तों खासकर ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, जय कदम, रितेश नायक महासमुंद छत्तीसगढ़ से, अर्पित बिजोले, अंतेश कुमार मिश्रा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, नितिन कुमार पटना बिहार से, अमरनाथ पैट्रो कोरापुट ओडिशा से, मोहम्मद इरफान, सचिन कुमार प्रयागराज उत्तर प्रदेश से और संजीव कुमार, आप सबका बहुत बहुत आभार। और रितेश, आप के प्रति बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से अपना रिव्यू भेजा है और जिस साहस के साथ आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों का मुकाबला कर रहे हैं, डेफिनेटली एकेडमी उसे सैल्यूट करती है। और विशेषकर मुझे मालूम है कि आप ऑनलाइन क्लास के सबसे पहले रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।